Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa salli ala rasulil karim. Ye kitab hai Kamal-ul-Shia Shaykh Ata'Allah Sikandri rahmatullah alayh ke islahi mafruzat ka majmua hai. Isme se hamari is jumme ki majlis mein padha ja raha hai. Allah se ye mang kar baithe ki Allah ne isme جو نورانی تاثیر رکھی ہے روحانی تاثیر رکھی ہے ایمانی تاثیر رکھی ہے ایقانی تاثیر رکھی ہے احسانی تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے یہ بات ہر بار عرض کی جاتی ہے بار بار عرض کی جاتی ہے کہ جب بھی ایسی مجالس میں شرکت کا موقع اللہ عطا فرمائے یہاں آویں یا کہیں جائیں یہ مجالس اصلاحی مجالس کہلاتی ہیں ان مجالس میں دل کی اصلاح میں مدد ملتی ہے اس لیے ہماری ایک ہی طلب ہو کہ میرا دل بن جائے سنور جائے پاک ہو جائے صاف ہو جائے شفاف ہو جائے نفس کی علائشوں سے پاک بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے یہ قرین بن جاتا ہے یہ دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے اس کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو تو سمائیں گے ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے اللہ کی ہر عطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بنیں گے دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے کہ دل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل ہو جائے کہ اللہ کی ہر عطاعت جو ہے وہ مرغوب طبعی ہو جائے اور اس کو کرنے کو جی چاہنے لگے اور کرنا آسان ہو جائے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے دل کے اندر کراہیت ہو جیسے گندگی سے غلاظت سے نجاست سے کراہیت ہوتی ہے ایسے اللہ کی نافرمانی سے کراہیت ہو اور اس سے بچنے والے بن جائیں تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے جب دل صاف ہو جاتا ہے شفاف ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے تو اس کی صلاحیت درست ہو جاتی ہے اللہ والے اسی کی محنت فرماتے رہے یہ ارشادات بھی حضرت کے اس زمانے میں ان کے لیے جو آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے حضرت کے ارشادات تو عربی میں تھے جس کا ترجمہ ہمارے قریب زمانے میں مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمۃ اللہ فرمایا کہ پہلے ملفوظ کا عربی سے اردو ترجمہ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد اس کے کچھ تشریح ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ دومی رحمۃ اللہ فرمائی پھر وہ پڑھی جاتی ہے فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب کے لیے کی تو گویا اس نے حق جل وعلا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا ہے ارشادات ذرا اونچے درجے کے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے ہیں جو اس وقت آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آ رہے تھے دل کی اصلاح کے لیے اور حضرت ان کو اس کے لیے کچھ مراقبات کچھ اشغال بتاتے تھے چونکہ وہ اس میں سے گزر رہے ہیں اصلاح کے دور میں سے اس لیے ان کے دلوں کی صلاحیت ذرا آگے سے ترقی کر رہی ہے اس لیے ارشادات تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں غور کریں گے سمجھ بھی آ جائے گی ورنہ ان کی تاثیر انشاءاللہ ہمارے دل میں اترے گی پھر اس کو پڑھ لیتا ہوں فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب کے لیے کی تو گویا اس نے حق جل وعلا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا اب اس کی تشریح کرم مولانا عبداللہ گوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ کا مقصود بندگی ہے اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے بندہ کا مقصود بندگی ہے तो कहते हैं ना एक जुमला हमारे हैं, मैं तेन कहना बंदा बन जा, बंदा बनना ही तो असल है, और बंदा बंदगी से है। बंदगी के हर अतात को करना, हर नाफरमानी को छोड़ना है। तो बंदे का मकसूद तो क्या है? बंदगी। इसलिए एक शेर भी है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये अल्लाह ने दी इसलिए है हम अल्लाह के बंदे बन के रहें, यानी उसकी हर अतात को करें, उसकी हर नाफरमानी को छोड़ें। तो बंदे का मकसूद बंदगी है। और अच्छा, ये चूँकि अर्शादा फिर ऊँचे दर्जे के इसलिए हैं कि ये उनके लिए हैं जो उस वक्त आपके पास इस मकसद के लिए आ रहे थे और इस्लाह हो रही थी, दिल की इस्लाहियत दुरुस्त हो रही थी। इसलिए हमारी अकलों से ज़रा थोड़े से ऊँचे दर्जे के हैं। अगर हम भी कोशिश करेंगे ना तो अल्लाह हमें भी समझाएंगे हैं। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि अगर असल मकसूद तो बता दिया, क्या बंदगी अतात करनी है, नाफरमानी को छोड़ना है। और अतात और नाफरमानी क्या है इस शरीयत ने बताइए, वाज़े है, एक एक चीज़ वाज़े है। हमें जो शरीयत मिली है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत अता की है, हमें अंदाज़ा नहीं है। उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, है? तो असल मकसूद तो बंदगी है, और बंदगी क्या है? अतात का करना, नाफरमानी को छोड़ना। ये सारी तफसीलात मौजूद हैं शरीयत मुतहरा के अंदर। आगे जो फरमाते हैं ये थोड़ी तरह ऊंचे दर्जे की बात है, अगर मकसूद ये हो कि मुझको सवाब मिले और जन्नत हासिल हो और दोजख के अजाब से निजात हो, तो इसको इसका मतलूब इंशाल्लाह हासिल होगा। लेकिन इस बंदे ने इबादत से अपने नफ्स के मज़ा और राहत ही को चाहा और नफ्स ही में मुबतला रहा। फिर अर्ज़ कर दूँ, ये हमारे अक्लों से ज़रा ऊंची बात है, मैंने भी पढ़ ली, आपने भी सुन ली। इसके अंदर इसका मगज़ क्या है, इसकी रूह क्या है, अल्लाह से मांगो खुल जाए। ये असल में सूफी ये हैं। आज सूफी का लफ्ज़ जो है बदनाम हो गया, मैं इसलिए बार बार अर्ज करता हूँ। आज हर एक को सूफी कह देते हैं, छोटी दाढ़ी सूफी साहब, सूफी साहब। फिर सूफियों के स्कैंडल इतने आम हो गए, उनकी गंदगियाँ, उनकी गलाजतियाँ आम हैं। फिर कहते हैं सूफी ऐसे होते हैं, सूफी ये हैं। सूफी कहलाने से सूफी नहीं बनेगा, सूफी तो दिल के अंदर की सफाई से बनेगा। जब दिल के अंदर सफाई होगी तो फिर ये चीज़ें जो बता रहे हैं ना, वो उसकी वजह, क्योंकि दिल के अंदर जब सफाई होती है, दिल के अंदर नूरानियत आती है, दिल के अंदर से गंदगियां निकलती हैं, फिर दिल के अंदर निखार आता है, दिल की सलाहियत जब बेहतर होती है, फिर ये चीज़ें समझ में आने लग पड़ती। तो ये जिन्होंने दिल साफ कर लिए ये उनकी बातें हैं। तो क्या फरमाते हैं, अगर बंदे का मकसूद असल जो है वो क्या है? बंदगी, हर हुक्म को मानना, हर नाफरमानी को छोड़ना, ये तो असल है। लेकिन अगर ये हो कि मुझको सवाब मिले और जन्नत हासिल हो और दोजख से निजात हो, तो उसको इसका मतलूब इंशाल्लाह हासिल होगा, मना नहीं है, ये साथ बता दी है। यानी ये भी ठीक है, है कि सवाब मिले, जन्नत हासिल हो, दोजख से अजाब से निजात हो, तो ये मतलूब भी मिलेगा, इंशाल्लाह हासिल होगा। लेकिन इसके अंदर एक जो एक थोड़ी सी जिसको वजाहत करना चाह रहे हुए हैं, इस बंदे ने इस इबादत से अपने नफ्स के मज़े और राहत को ही चाहा। अब ये बात आसानी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि मैं तो डांट खा चुका हूँ। ये अक्सर डांट से मुराद यह है कि जितने अक्सर पढ़ता रहता हूँ, रमज़ान के अंदर भी तरावी के बाद ये पढ़ी जाती थी, एक साहब तो बरस पड़े, अब जन्नत भी ना मांगे, इसमें मना तो नहीं किया है, इससे मना तो नहीं किया। तो मैं कि ये भी सही है, मतलूब हासिल होगा, अजाब से निजात, लेकिन एक आधा दर्जा। ये असल में इखलास का, इखलास की हकीकत को बयान कर रहे हैं, यानी अमल को करना किसके लिए है? अल्लाह के लिए। اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ راضی ہو جائے, وہ راضی ہو گیا تو باقی سب چیزیں اس کتاب میں ملیں گی, یقیناً ملیں گی. لیکن اس کا مقصود تو کیا, مولا کو راضی کرنا, وہ دے یا نہ دے, میں تو بندہ ہوں, میں تو بندگی کروں گا. دیں تو اس کا انعام ہے, اس کا احسان ہے, استحقاق نہیں ہے, میرا حق نہیں ہے, میں تو بندہ ہوں. اب آپ اب بندہ غلام کو کہتے ہیں بندہ, آج غلامی کا زمانہ ختم ہو چکا, ایک زمانہ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے اسلام کی برکت سے رفتہ رفتہ غلامی ختم ہو گئی, اب غلام دنیا میں کہیں نہیں. لیکن ایک زمانے میں انسان بکتے تھے, جیسے آج کل ہیں منڈیاں لگی تھیں نا جانوروں کی قربانی کے لیے, ایسے منڈیاں لگتی تھیں انسانوں کی, یہ غلام بکتے تھے. ایک زمانہ گزر ہے, اور وہ غلام جس کو آپ قیمت دے کے خرید کر لے آتے تھے اس کا کوئی استحقاق ہوتا تھا؟ جیسے جانور کو خرید کر لے آئے ہیں آپ کا ہو گیا ہے, ایسے وہ غلام بھی انسان جو ہے اس کو خرید کر لے آتے تھے, اور لانے کے بعد وہ آپ کا ہو گیا ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا. وہ تو بعد میں اسلام نے الحمدللہ ایک نظام بنایا, ان کے حقوق متعین کیے ہیں, رفتہ رفتہ پھر یہ ختم ہی ہو گئی. لیکن ایک زمانہ ہے, اسی زمانے کا ایک قصہ ہے, ایک غلام کو خرید کر کوئی لے آیا. اب ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے, خریدنے والا بھی بڑا اچھا تھا ہیں, اور بکنے والا بھی بڑا اچھا تھا. اسی سے دعویٰ جو میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں, کئی بار پہلے بھی بیان کیا, اس غلام کو گئے پسند کیا اور قیمت دی اور لے کر آ گئے. اس سے پوچھا بھی تیرا نام کیا ہے, ہر انسان کا نام ہوتا تھا. وہ غلام بھی عجیب تھا, وہ کہنے لگے پہلے جو بھی نام تھا اب تو میں آپ کا غلام ہوں, آپ جو چاہے رکھ دو, اب تو مجھے آپ خرید کر لے آئے ہیں, میں آپ کا ہو گیا ہوں, جو نام پہلے تھا اس کو چھوڑو, اب جو چاہے رکھ دو. پھر اس سے پوچھا تیرے لیے کس قسم کے کپڑے بنائے؟ یہ آقا اس کا مالک بھی اچھا تھا, رعایت کرنے والا تھا, کہ اس کی رعایت کروں؟ اس نے کہا جو چاہو پہنا دو. انہوں نے پوچھا کہ اچھا تیرے رہنے کے لیے کیسی جگہ تمہیں دیں؟ انہوں نے کہا جہاں چاہو رکھ دو. نہ کپڑوں کے تعلق سے, نہ کھانے کے تعلق سے, نہ رہنے کے تعلق سے. تو جھنجھلا کے کہا تو تیری بھی مرضی ہے, بتا تو صحیح کیا غلام کی کیا مرضی. غلام سمجھتا تھا کہ میں غلام ہوں, میرا آقا یہ ہے, مجھے خرید کر لے آیا ہے, میرا مالک ہے, دے دے گا تو اس کا احسان نہ دے تو میں کیا کروں گا. اب غلام ہے نہیں, اس لیے غلامی کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں ہے. آج زمانہ کیا ہے, نوکری کا. نوکر غلام میں بنیادی فرق یہی ہے کہ نوکر کا استحقاق ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا, یہ تنخواہ لوں گا, ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے نا کہ یہ کام کروں گا, اتنے گھنٹے کروں گا اور اتنی تنخواہ لوں گا. اس لیے اگر وہ کام کوئی زیادہ دے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہے. پیسے کم کرے نہیں, کیوں ہیں, اس کا استحقاق ہے, اس کا حق ہے, اس کا معاہدہ ہے. غلام کو کوئی استحقاق نہیں ہوتا, غلام میں یہ چیز ہے. اس لیے میں نے جو واقعہ سنایا پہلے غلام ایسے ہوتے تھے, تو ہم بھی تو اللہ کے غلام ہیں. ہم اللہ کے کیا ہیں؟ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کا ہم پر حق ہے, جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, زندگی دی ہے, اس کا ہم پر حق ہے, اور اس نے ہمارے لیے شریعت مطہرہ نازل فرما کر پھر آخرت کے اندر انعامات دینے کا وعدہ فرما دیا. یہ اس کا انعام احسان ہے, اگر کچھ بھی نہ دیں پھر بھی اس کی اطاعت ہمارے لیے لازمی ہے. تو یہاں جب دل کے اندر صفائی ہوتی ہے تو پھر دل کے اندر بیداری آتی ہے, پھر اپنی غلامی کا استحقاق, غلامی کا احساس ہوتا ہے. اس لیے کہا ہے کہ بندے کا مقصود کیا, بندگی ہے, یعنی غلامی ہے. اس نے بندگی آمد برائے زندگی, آمد برائے بندگی, एक शेर भी है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी तो है ही इसलिए है कि हम बंदगी करें, उसकी गुलामी करें, उसकी हर अचाक को करें, हर नाफरमानी को छोड़ें, हैं। तो कहते असल मकसूद तो ये है, लेकिन अगर उसका ये मकसूद हो कि मुझे सवाब मिले और जन्नत हासिल हो और दोज़ख़ से अज़ाब से निजात हो, तो इसको भी इसका मतलूब इंशाल्लाह हासिल होगा, ये हासिल होगा। लेकिन इस बंदे ने बंदगी नहीं की, ये गुलाम नहीं बना, ये अपनी इबादत से अपनी अताअत से भी अपने नफ्स का मजा चाह रहा है कि वहाँ भी मुझे मिले, अपने नफ्स के मज़े और राहत ही को चाहा, ये नफ्स में मुबतला है। अच्छा, अब अगली बात जो कह रहे हैं ये बड़ी गहरी बात है, ये सारा तसव्वुफ़ का निचोड़ इसमें आ जाएगा। यानी इसने अपने मज़ा नफ्स का चाहा, राहत नफ्स की चाही, तो नफ्स में फंसा रहा। हक तआला की कमाल की सिफत और जलाल तो अजमत की शान का हक अदा नहीं किया, यानी इसने अल्लाह को पहचाना नहीं, इसने को अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं हुई। जिसने अल्लाह को पहचान लिया, उसकी किबरियाई को, उसकी अजमत को, उसकी बड़ाई को, उसकी सिफात कमाल को, उसका तो जी चाहेगा उसकी अताअत करने को, कुछ मिले या ना मिले। तो असल चीज़ जो इंसान की पैदाइश से उसका है, अल्लाह की मार्फत को हासिल करना, उसको पहचानना। अब ये मार्फत तो कहते हैं पहचानने को, उसकी किबरियाई को, उसकी बड़ाई को, है, है? उसके जमाल को, उसके जलाल को, उसकी सिफात कमाल को, है। सूफी तो वो हैं, ये हैं सूफी जिन्होंने अल्लाह को पहचान लिया है, उसकी किबरियाई को, उसकी बड़ाई को, उसकी अजमत को, उसकी सिफात कमाल को। तो उसका तो खामखा जी चाहता है हर अताअत के करने को, हर नफरमानी को छोड़ने के लिए, कुछ मिले ना मिले। वो तो अल्लाह की इबादत इसलिए करता है, उसने अल्लाह को पहचान लिया है। ये अल्लाह का एहसान है, इनाम है कि हमें वादे दे फरमा रहे हैं कि मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। लेकिन ये इखलास का आला तरीन दर्जा है। अल्लाह करे हमें भी ये चीज़ हासिल हो जाए, हैं। तो फरमाते हैं, हैं, कि अगर ये इसका मकसूद हो, हैं, कि मुझे सवाब मिले, जन्नत हासिल हो, दोज़ख़ से अज़ाब से निजात हो, इसको इसका मतलब इंशाल्लाह हासिल होगा। लेकिन इस बंदे ने इबादत से अपने नफ्स के मज़े और राहत ही को चाहा और नफ्स ही में मुबतला हुआ। हक तआला की कमाल की सिफत और जलाल व अजमत की शान का हक अदा ना किया। कमाल तो ये है कि बंदे की इबादत मौला तआला शानहु की अजमत और कमाल की वजह से हो, उसका दिल उसके सामने ऐसे झुके, उसको पहचान कर, उसकी किबरियाई को पहचान कर, उसकी सिफात कमाल को पहचान कर, है, है, और जन्नत की तमाम और दोज़ख़ के खौफ ही से ना हो। इसलिए कि गुलाम की शान तो गुलामी करना है, खा मालिक इसको नवाजे या धिकारे। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें भी इसकी कुछ समझ अता फरमा दे, थोड़ी सी कोशिश की इसकी तशरी के लिए। तो ये तसव्वुफ़, असल तसव्वुफ़ ये है, सूफी ये हैं जिनके दिलों के अंदर ऐसी शफाई आई, ऐसी नूरानियत आई कि उन्होंने अपने दिल से अल्लाह को पहचाना, उसकी अजमत को, उसकी किबरियाई को, उसकी बड़ाई को, है, है, उसके कमाल को, उसकी सारी सिफात कमाल को। तो दिल तो झुकेगा उसकी तरफ, झुकेगा उसकी नाफरमानी से, तो घिन आएगी, है, उससे बचना चाहेगा। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमा दे जाए ना। तो असल जो तसव्वुफ़ के जरिए कोशिश हो रही है वो दिल की इस सफाई के, ये अल्लाह वाले जो हैं ये खुद इसमें से गुजरे हैं। हजरत की ये किताब जो है, आज दुनिया के अंदर जितनी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, कई जुबानों में इसके तर्जमे हो चुके, जैसे आज हम भी पढ़ रहे हैं, 709 हिजरी में आपका विसाल हुआ था, कितना वक़्त गुजर गया है, आज भी उनकी कदर व मंजिलत है, इसलिए कि इन्होंने वाकई अपने दिल के अंदर सफाई हासिल की, शफाफत हासिल की, लताफत हासिल की, पाकिजगी हासिल की है, इसलिए इनकी अरशादा से आज भी फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। तो दिल के अंदरून की सफाई के लिए, दिल के अंदरून के अंदर ये सलाहियत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके राइज हैं। ये कादरिया सिलसिला है, यानी कादरिया तरीका है दिल के अंदर की इस इसलाह के लिए है, ये चिश्तिया सिलसिला है दिल की अंदर की इसलाह के लिए है, ये सोहरवर्दिया सिलसिला है दिल के अंदरून की इसलाह के लिए, और ये नक्शबंदिया तरीका है दिल के अंदरून की इसलाह के लिए। ये मकसूद सबका एक है कि दिल के अंदर ये सलाहियत आए कि अल्लाह को पहचाने, उसकी मोहब्बत दिल के अंदर जागजी हो, उसकी हर अताअत को उसकी मोहब्बत की बिना पर पहचान कर करें, हर नाफरमानी को, हर गंदगी को, हर गलाजत को दिल से निकालें हैं। तो इसके लिए एक तरीका ये भी है जिसकी हमारे यहाँ मश की जा रही है, वो नक्शबंद तरीका है। और नक्शबंदिया के अंदर फिर आगे शाखें बनती हैं है? ये हजरत मुजद्दद अल-थानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, बर्रे सगीर के अंदर अल्लाह ने नक्शबंद की खिदमत उनसे ली है, उनके फिर खुलफा हैं आगे, फिर आगे जो शाखें चली हैं, एक शाख उनमें से चली उनके खलीफा आदम नूर रहमतुल्लाह अलैह से, जिसकी हमारे यहाँ मशक की जाती है, वो क्या है, दिल के अंदरून की इस सफाई के लिए, इस पाकिजगी के लिए, इस सलाहियत के लिए, वो है जिक्र खफी यानी जिक्र खलबी, दिल के अंदर से अल्लाह को याद करना। और इसका मुस्तकिल हुक्म भी है, यानी दिल के अंदर से, दिल से अल्लाह को याद करना, वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन खीफतन व दूनल जहर मिन अल क़ौल बिल ग़ुदूव वल आसाल वला तकुन मिन गाफ़िलीन, फरमाया जा रहा है, जिसका मफ़हूम है अपने रब को अपने जी में याद करो, किस में, दिल में याद करो, आजिज़ी के साथ पुकारे बगैर, यानी चुपके चुपके, और सुबह भी याद करो, शाम भी याद करो, यानी कसरत से याद करो, गाफिल में से ना हो। तो दिल को गफलत से बेदार करने का कुरान एक तरीका ये भी बता रहा है, या यही नहीं कह रहा, आजकल ऐसा ही है ना, जैसे बीमारियों के इलाज के तरीके राइज हैं, जिस्मानी बीमारियों के, एक पुराना एंशंट पुराना कदीम तरीका है जड़ी बूटियों से है, फिर उसके बाद और तरीके राइज हो गए, ये होम्योपैथी तरीका है, अब जदीद मेडिकल साइंस आ गई है, अब ये तरीके आ गए हैं, मखसूस बीमारी का इजाला ताकि जिसम में कुव्वत और हिम्मत आए और काम करे। इसी तरीके से है, जानते बहुत कुछ है, मालूम बहुत कुछ है, अमल की हिम्मत ही नहीं हो रही, तकरीर कर लेंगे, बयान कर लेंगे है, लेकिन अंदर हिम्मत नहीं हो रही, क्यों, वो अंदर एक मर्ज आ गया। तो इसके लिए ये इलाज के तरीके हैं है? इनमें से एक तरीका ये भी है जिसकी मैंने अभी आपको किया है, इसका भी कुरान के अंदर जिक्र है, इसलिए हमारे इसकी मशक जाती है कि दिल के अंदर जो है अल्लाह के नाम की तकरार, हाँ वज़्कुरिस्म रब्बिका व तबत्तल इलैही तब्तीला, यहाँ फरमाया जा रहा है रब को उसके इसम से याद करो, तन्हाई में बैठ कर ये सलाहियत लेनी है दिल के अंदर, ये कुव्वत लेनी है हर गुनाह को छोड़ने की, हर नाफरमानी को छोड़ने की, हर अताअत को करने की है। इसके लिए कुछ वक्त तन्हाई में बैठकर अपने दिल के अंदर हम अल्लाह के मुबारक नाम की तकरार करें, वज़्कुरिस्म रब्बिका इसम के साथ है। तो इसम तो एक ही है, वो क्या, अल्लाह, बाकी सिफाती नाम है, रहमान क्या है सिफत है, रहीम क्या है सिफत है, करीम क्या है सिफत है, है? ये सिफाती नाम है, ज़ाती नाम ये क्या क्या, अल्लाह। इसलिए हमारे यहाँ इसकी मश की जाती है, है? यहाँ तो तालीम के जमा हो जाते हैं, असल जो दिल की इसलाह के लिए, दिल की सलाहियत को बेदार करने के लिए, दिल के अंदर नूरानियत के लिए, दिल के अंदर शफाफत के लिए, लताफत के लिए हैं, है? इसके लिए है कि तन्हाई में बैठें और दिल में तसव्वुर से लफ्ज़ लिखें अल्लाह, जो रंग जिसको अच्छा लगे, बाद में शायद हम भी बता देते हैं, हमारे यहाँ नहीं, जो जिसको अच्छा लगे हैं तसव्वुर से दिल पर लिखें या लिखा तसव्वुर करें और फिर इस मुबारक नाम की दिल में तकरार करें। फतबारा कस्म रब्बी का फरमा रहे हैं कि उसका जो नाम है, ये इसम जो है, ये बड़ा मुबारक है, बड़ा मुतबर्रक है। तो जैसे हाफिज तकरार करता है कुरान की आयात की, कुरान सीने महफूज हो जाता है, तो अल्लाह का ध्यान ख्याल हमारे सीने में ऐसे महफूज हो जाए, हर वक्त याद रहे, तन्हाइयों में याद रहे, जो उसके अताक पर डाल दे, हर हराम काम से रोक दे। इसके लिए तन्हाई में बैठकर अपने दिल में इसके मुबारक नाम को लिख कर इसकी दिल में तकरार करें, अल्लाह 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 अल्लाह। ये तकरार इतनी करनी कि जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, उसका ध्यान ख्याल हमारे दिलो दिमाग में है, रेशे रेशे में ऐसे समा जाए, तन्हाइयों के अंदर भी उसके अचाक पर डाल दे, हर नाफरमानी हर राम काम से रोक दे। तो ये हमारे यहाँ इसकी मशक है, इसी की हम मश करें। लेकिन असल जो मश होगी हमारी, खुद तन्हाई के अंदर बैठकर कुछ वक्त मुकर्रर करके इसकी तकरार करें। जो है अब इस मुबारक नाम की थोड़ी देर के लिए अपने दिल में तकरार कर लें। आंखें बंद करना एक वक्ती ज़रूरत है ताकि तवज्जो दिल पर आ जाए, वैसे खुली आंखों से भी कर सकते हैं। तो दिल पर तसव्वुर करके लफ्ज़ अल्लाह है, और इस नाम की अपने दिल से यानी अपनी कुव्वत इरादे से तकरार करें, अल्लाह 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 अल्लाह। अब थोड़ी देर के लिए इस मुबारक नाम की हम तकरार दिल में कर लें। Thank you.